जाते हैं दोबारा आइडेंटिटी के ऊपर। भगवान द्वारिका में राजा हैं, 16,108 पत्नियां, एक एक पत्नी से 10-10 लड़के, एक लड़की भगवान पर है। एक चक्र शासन है तो दूसरे जो राजा लोग हैं उन पर जब कभी संकट आता है तो भगवान के पास गुहार लगाते हैं, मदद करते हैं। तो एक दिन भगवान राजसभा में बैठे थे, इतने में एक व्यक्ति आया, तत्रे का पुरुषो राजनागतो पूर्व दर्शनम विज्ञापितो भगवते प्रति हरे प्रवेशिता। उस व्यक्ति ने प्रवेश किया, भगवान को प्रणाम किया और अपना दुख कहना शुरू किया। काहे भगवान, जो जरासंध है राजा उसने 20,000, कहीं पर 20,000 वर्णन है, कहीं पर 20,800 राजाओं का वर्णन है, इतने राजाओं को बंदी बना दिया है और कुछ दिनों बाद उनकी बलि देने वाला। जरासंध क्या करता, जो राजा उसके शरणागत हो जाता उसको तो शरण देता, जो शरणागत नहीं होते या कुछ अनाकानी करते उनको बंदी बना लेता और मरवा देता। तो 20,800 राजाओं में तो दूत ने भगवान से कहा कि कैसे भी आप हमारी मदद करिए। कृष्णम कृष्णम हरियात्मनम प्रपन्न जय भंजनम वयम का शरण भगवीता प्रताप्यम। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं, दुख को दूर करते हैं, इससे हमारे दुख को आप दूर करिए। तब भगवान ने कहा मैं आपका दुख दूर करने के लिए जरूर आऊंगा। फिर भगवान इंद्रप्रस्थ चले गए, जहाँ पांडवों की राजधानी है वहां राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन था। तो भगवान ने राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया, खुद भी सेवा की और फिर अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध की राजधानी में प्रवेश किया। तो जरासंध जरासंध ब्राह्मणों का वह सम्मान करता है, इसलिए भगवान ने अर्जुन और भीम से कहा कि हम ब्राह्मण वेश में वहां जाएंगे। ब्राह्मणों का सम्मान इसलिए भी करता है कि उसको ब्राह्मणों की कृपा से एक बार विजय मिली थी। भगवान ने शत्रुवाद जरासंध को युद्ध में हराया, 23 शत्रुओं की सेना लेके आता। महाभारत के युद्ध में 18 सेना का वर्णन है, लेकिन जब जरासंध युद्ध करता था भगवान से तो 23 शत्रुओं की सेना लेके आता। तो 17 बार भगवान ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार उसने सब ब्राह्मणों को घर में बुलाया, महल में 11,000 ब्राह्मणों को बुलाया, वर्णन है 11,000 ब्राह्मणों को बुलाया, कहा क्या मेरी विजय की कामना के लिए मंत्रोच्चारण। तो ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो वहां मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, युद्ध करने के लिए गया तो भगवान ने, भगवान सब जानते हैं ब्राह्मणों की मेरी स्तुति कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों के वचन को सत्य करने के लिए 18 बार भगवान जरासंध से युद्ध में हारे। तो के राजा रानी हरि भगवान दूसरी कथा ये आती है कि जरासंध ने इस बार हजारों ब्राह्मणों को मन में बुलाया, उनको खूब खिलाया पिलाया, रबड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला चमचम और मोटी मोटी दक्षिणा भी थैली में लिफाफे के अंदर दी। वो सब ब्राह्मण बड़े खुश हुए। दोनों का क्या चाहिए? तो जरासंध ने कहा इस बार हम 17 बार हार गए हैं, इस बार हम जीतना चाहते हैं, तो आप हमको वरदान दो। तो ब्राह्मणों ने देखा दक्षिणा अच्छी मिली है, खाने पीने को भी ठीक मिला, तो कहा कि विजयी हो। तो उन्होंने सामने तो बोल दिया विजयी हो, लेकिन बाद में उनको पता लगा भगवान की कभी विजय को किसी का होता है। ये जो 17 बार हार गया या 18 बार थोड़ी जीतेगा। तो जरासंध ने कहा हे ब्राह्मणों, अगर आपका ये आशीर्वाद फलित हो गया तो हम तुमको दोबारा संपन्न मुख देंगे, अगर नहीं हुआ तो इस बार के जितने रबड़ी गुलाब जामुन है सबका पेट मांगे वाले। तो सब ब्राह्मण बड़े घबरा गए और ब्राह्मण भगवान के पास गए। तब ये मंत्र का नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय तो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा क्या हुआ? ब्राह्मण ने कहा अंतरिया में है सब जानते हैं, हमने आशीर्वाद मन से नहीं दिया, गुलाब जामुन के चक्कर में दे दिया दक्षिणा के चक्कर। और जो व्यक्ति आपसे 17 बार हार गया हो वो कभी 18 बार जीतेगा? इसलिए हे भगवान, हम आपके शरणागत हैं, आप ब्राह्मणों की गायों की हितैषी हैं, इस बार आप हमारे लिए हार जाते। तब ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने क्या किया? जरासंध युद्ध के मैदान में दूरी कर आ रही थी उसकी जरा पहले ही बात कर। इसलिए भगवान का एक नाम है रणछोड़ भगवान, गुजरात में रणछोड़ भगवान का मंदिर, क्योंकि भगवान ब्राह्मण की रक्षा के लिए भागे, इसलिए भगवान उस रूप में भी आज पूजा होती है। दूसरे के हित के लिए भागे, भलाई के लिए भागे। तो जरासंध ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता है, बड़ा आदर है। कोई भी चाहे ब्राह्मण के वेश में कोई चला जाए उसके पास सम्मान करता और अकेले वो बात करता है। तो भगवान अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास गए। तो जरासंध ने बड़ा सम्मान किया, हो बैठो। तो जरासंध ने कहा क्या सेवा करो आपको? तो भगवान ने कहा हम तो अभी अभी पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे, अचानक आपका नाम सुना, आप बड़ी उदास दिखते हैं और सुना है कि आप ब्राह्मणों सबों का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम आपका दर्शन करने आए। और कुछ इच्छा है हमारी? तो जरासंध बोला इच्छा प्रकट करिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता। तब भगवान ने कहा युक्त अनुरोधे राजेन्द्र द्वंद्व तो यदि मन्यते युद्धाचरण वयं प्राप्ता राजन्यानानि कांचन। हे राजन, हम युद्ध की इच्छा चाहने वाले ब्राह्मण वेश में क्षत्रिय अपना परिचय दिए, युद्धाचरण वयं प्राप्ता, हमको युद्ध की भीख चाहिए, हम द्वंद युद्ध करना चाहते हैं, कुश्ती करना चाहते हैं। जरासंध जरासंध ने कहा ये बेचा मांगने वाले अर्जुन बेचा मांगने वाले कैसे आ गए? कोई पैसा मांगता है, धन संपत्ति मांगता है, युद्ध की बेचा मांगने वाले पहली बार आज हमारे यहां आए।
तो भगवान को देख के पहले समझ गया था, लेकिन चूंकि ब्राह्मण का सम्मान करता था जरासंध, तो कुछ खुल के बोला नहीं, क्योंकि भगवान जब हंसे तो जरासंध पहचान गया कृष्ण, लेकिन फिर भी बोला आपको कहीं देखा नहीं लगता है। तो भगवान ने कहा किसी यज्ञ में देखा होगा, कहीं भागवत कथा में देखा होगा, क्योंकि मैं तो ऐसी जगह ही जाता हूं। क्योंकि भगवान जहां पर हंसते हैं, भगवान की मुख्य पहचान कहां पर है? भगवान जहां है जहां, और भगवान हंसने से कैसे पहचाने जाते हैं? चोर कैसे पकड़ा जाता है? चोर हंसा तो हंसा, अगर चोर कोई चोरी करने गया है अगर तो हंस गया किक करके तो पकड़ा। भगवान जीवों के अनंत जन्मों के पाप कर्मों की चोरी करते हैं, इसलिए भगवान को एक संज्ञा चोर की भी दी जाती है। जब शिशुपाल ने भगवान को गाली दी तो उसमें गाली है कि भगवान से उसने कहा तुम चोर, तो भगवान ने कहा ये बात तो सही है, मंतु भगवान कैसे चोर हैं? वो जीव के जन्म जन्मांतर के दुर्गुणों को, दुष्कर्मों को, बुरी वृत्तियों को न देख करके उसकी सदवृत्ति को देखते हैं। बच्चे थे गुरु न के नाम पर आघान सेवा मनाकर कितान गौराज पे थी आवन करो कि पिछले सभी नाम की सुया शीलेन निर्मल मती पुरुषोत्तम हो जाए। भगवान कभी भी ये नहीं देखते कि जीव ने कितने बुरे कर्म, कितने हजारों जन्म मेरा भजन नहीं किया, मेरा चिंतन मनन नहीं किया, मेरी सेवा नहीं की। भगवान देखते किस जन से मेरी सेवा, रूप गोस्वामी पर लोग देखते हैं, हम भी सामने बृहस्पति बच्चे गुरु न बिना बरा, लेकिन सेवा मना के कितना हो जाती पेटी, थोड़ी सी कोई सेवा कर दे उसको बहुत बड़े रूप दे, और बहुत बड़ा अपराध कोई कर दे उसको छोटे से रूप में मिले दे। आप इसको करो कि कृष्ण इस सभी नाम की सुयान शीले में निर्मल मती पुरुषोत्तम हो या ऐसे निर्मल हृदय के भगवान पुरुषों में उत्तम है। इसलिए जीव के कोटि कोटि जन्मों के अपराधों को भगवान चोरी करते, इसलिए भगवान सबसे बड़ी चोर है। इसलिए भगवान जब हंसे तो जरासंध को भनक लग गई कि कृष्ण ही है। फिर बुलाकर करते हैं देखा होगा भाई, तो जब युद्ध की इच्छा की तब जरासंध का कौन हो, तब भगवान ने कहा अशोक को द्रो पाठो जी का बड़ा पेट है, सच वार्ता सुनो हम जो दाई तरफ खड़े हैं मेरे, ये अर्जुन है सरल ही बदल वाले जिनका पेट नहीं दिखाई, और अनिल मां सुने मां कृष्ण, और मैं इन दोनों के मामा का लड़का कृष्ण हूं, इन दोनों के मामा जी का लड़का हूं। जानी तेल गुम, और शायद तुम ये भी जानते होंगे कि मैं तुम्हारा बहुत पुराना शत्रु हूं। भगवान ने पूरा परिचय दे दिया। जरासंध ने मथुरा में एक बार सब मथुरावासी सो रहे थे, भगवान ने जब कंस का उद्धार किया, महाराज उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया, तो युवराज ने भगवान मथुरा में जाए, तो जरासंध ने मथुरा में चारों तरफ से आग लगा दी। तब भगवान ने रातों रात योग माया से कहा पूरी मथुरा नगरी को द्वारिका में शिफ्ट कर, तो जितने भी युगमंत्री मथुरा के लोग सो रहे थे रात्रि में, क्योंकि आग लगाई अर्धरात्रि में, तो योग माया ने सबको उठा करके द्वारिका में समुद्र द्वारिका में तो सोए मथुरा में और जाके कहा द्वारिका। तो जब वो लोग सुबह उठे तो वहां के दरवाजे अलग थे, तब सब ने कहा द्वार कहां द्वार कहां द्वार कहां किसी द्वारिका नाम। तो जरा से तो बहुत पुराना और सत्र बारी तुम हल गया, तो भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारा बहुत पुराना शत्र हूं, जाने नहीं देर हूं। तो जरा तुम से कहा भगवान ने कि तुम हम तीनों में से किसी से भी युद्ध की शक्त, मैं ऐसे कर सकते हो भीम से अर्जुन से, हम तीनों में से कोई एक ही लड़ेगा, तीनों नहीं जीत सकते तुम तीनों में से हमको जो भी पसंद हो तो आप युद्ध के लिए हमको चुन सकते हैं। तो जराचंद ने विचार किया कि जिस व्यक्ति ने हमको 17 बार युद्ध में हराया, अगर मैं इससे युद्ध लड़ूंगा तो जीतना असंभव है। बड़ी मुश्किल से वो 11,000 रावणों की कृपा से मुझे विजय मिली, तो थोड़ा विजय का मोहर हमारे ऊपर लगा है इस तरह कि हम जीत लेते एक बार और दोबारा अपनी हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए अपनी बातों को दबा करके भगवान से बोला, अरे तुमसे कौन लड़ेगा, तुम गाइड कराने वाला न तैयार भिड़ना ही होते, तुम नंबर इतना डरपू मथुरा से भाग करके द्वारिका चला गया और वो भी कहा समुद्र के बीच में चला गया, फिर वो कहीं जमीन में भी जगह नहीं मिली महल बनाने की। तुम इतना डरपोक है, तुमसे कौन लड़े। भले विचार किया कि इससे लड़ने में कोई फायदा नहीं क्योंकि अपने हाथ में, क्योंकि काय शक्ति का लक्षण होता है वो असली बात को छुपाएगा कपट की बात को, या कपट को छुपाएगा दूसरी बात मान। तो भगवान को यह तो नहीं बोला कि तुमने हमको 17 बार हराया, 17 बार जो हार गया उसको भूल गया, लेकिन वो एक बार रावण की कृपा से जीत गया तो उसको याद है, और अभी भी उसने सोचा आपकी बात अगर हम कृष्ण से लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तो भगवान को नीचा दिखाना चाहता है। न तया निर्णायो से युद्ध विकृत चेतसा युद्ध विक्लव चेतसा, तुमसे कौन मथुरा मथुरी का तुमने अपनी नगरी मथुरा को त्याग करके समुद्रम शरणम लगा, तुम खुद समुद्र की शरण में रहते हो, तुम शरणार्थी से कौन लड़े। भगवान समुद्र में रहते हैं, द्वारिका समुद्र के बीच में बने। यही बात रुक्मणी से भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद में जो बात जरासंध भगवान से हमको कहता है समुद्रम शरणम गता, यही बात भगवान अपने मुख से एक बार रुक्मणी को कहते हैं। रुक्मणी जी को कभी क्रोध नहीं आता, 16,108 पत्नियों में शायद रुक्मणी है रानी है भगवान की, जो कभी भी गुस्सा नहीं होती नाराज नहीं। सब रानियां मैंने 15 दिन में कुछ न कुछ नाटक दिखाते थे, सत्य भामा हफ्ते में 2 बार नाराज होती क्योंकि तुम्हारा 17 जीत की लड़की है और द्वारिका के खजाने में जो 80% धन है पैसा वो सत्य भामा के यहाँ का, क्योंकि 17 जीत के बाद चमंतक मणि थी वो मणि ही भगवान के कोष में रहती है, वो जो 80% इनकम है वो चमंतक मणि से होती है। तो सत्य भामा क्लब सुंदर भी है और पैसे वाली भी है, तो हफ्ते में 2 बार होती है। मित्रविंदा जाम्बवती ये भी 15 दिन महीने में एक बार झगड़ा करते, लेकिन रुक्मणी जी कभी नहीं रोते। तो भगवान ने एक बार विचार किया, ये सबसे पहली हमारी रानी, ये जो बात वाली आई है 50 बार हमसे लड़ चुकी है, गुस्सा कर चुकी है, कुछ न कुछ मांग करती है, डिमांड करती है, लेकिन रुक्मणी कभी नहीं करती। और जो रुक्मणी का वो भवन है जहां नाराज होकर के जिसको फोन पर रहते वो उस पर भी हमेशा ताला ही लगा रहता है, ये कभी को भवन में जाती नहीं। तो भगवान ने एक बार विचार किया कि मैं इसको चढ़ा कर, मैं इसको चढ़ाऊंगा, देखता हूं गुस्सा होती है। तो भगवान रुक्मणी के भवन में गए और चुपचाप जाकर के बैठे। रुक्मणी ने कहा क्या हुआ भगवान? कुछ सेवा, रुक्मणी जी बात करती हैं, भगवान बात नहीं करते। अब बड़ी सुशीला पति पर आए हैं, भगवान की भक्त हैं, तो रुक्मणी जी बार बार बोली भगवान हमसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई, जो आप मुझसे बात नहीं करते हैं, भगवान से भी बात नहीं करते। फिर रुक्मणी बोली मैं जानती हूँ मुझसे रोज गलती होती है, लेकिन आप गलती बताओगे तभी तो मैं उसको सुधार करूंगी ना, आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे मुझे क्या मालूम मैं क्या गलती कर। तो जब बहुत बोलने लगी तब भगवान ने कहा गलती तुम गलती पर गलती, गलती पर गलती, हजार बार गलती पर गलती करती जाती हो। तो रुक्मणी ने कहा मेरी गलती तो बताइए। तब भगवान ने कहा पहली गलती तुम्हारी ये है कि तुमने मुझे शादी क्यों, इतने बड़े बड़े राजकुमार महाराज भीष्मक के यहाँ लाइन लगी थी राजकुमारों की, हमसे भी सुंदर पराक्रमी अच्छे घराने के लोग, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए, मैं गाय चराने वाला हमसे शादी क्यों की तुमने? तो वहां पर दूसरी बात बोलते हैं भगवान, वहां पर कारण बताते हैं चिढ़ाने के लिए कि तुमने हमसे शादी क्यों की। मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर हमारे प्रति संशय हो गया, तुमने हमारे अंदर जो कुछ देखा वो सब गलत है। तो उसमें पहली बात भगवान बताते हैं तुमने क्या समझा, मैं बड़ा पराक्रमी हूं, मैं बड़ा बलवान हूं, इसलिए हमने शादी की। तब भगवान कहते हैं राजा सुग्रु समुद्र शरणम गता, मैं काहे का पराक्रम, मैं नंबर का डरपोक हूं, इसलिए मैं मथुरा छोड़कर के द्वारिका गया और द्वारिका में भी समुद्र के बीच में रहता। हमको कहीं स्थल में भूमि में जगह नहीं मिली, मैं डर के मारे वो समुद्र के बीच में बीच में रहता। रुक्मणी ने इसका जवाब दिया कि हे प्रभु आप समुद्र में क्यों रहते हैं, और इस द्वारिका का जो समुद्र है वो समुद्र की तुलना रुक्मणी किससे करती है? आशा की समुद्र, और भूमि की तुलना करती है कि जो भूमि है ये जीव के हृदय जैसा है, जैसे बद्ध जीव काम क्रोध लोभ मद आश्चर्य इन दोषों से भरा पड़ा है। तो रुक्मणी जी कहती है आप ऐसे स्थल में थोड़ी रहते, ऐसी भूमि में वास थोड़ी करते हैं, ऐसे हृदय में वास थोड़ी करते हैं, आप तो आशा रूपी समुद्र में वास करते हैं। रुक्मणी जी इसका उत्तर देती है, बहुत बड़ा प्रसंग है। तो यहां पर जरासंध कह रहा है तुम इतना डरपोक आदमी समुद्र में शरण लगा, समुद्र की शरण में चला गया भाग। अयम कुमैता तुल्यो नाति दत्तो न मे तम अर्जुनो न भवै देवता अभिमन तुल्य बलो मम। इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। और रही बात है अर्जुन की, ये दुबला पतला इसका तो पेट भी दिखाई नहीं देता है, ये दुबला पतला इससे हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हाँ ये जो भीम है ये अपने भीम तुल्य बलो, भीम से थोड़ा हम टक्कर, भीम हमारे टक्कर का है इसलिए मैं भीम से लड़ूं। अब भीम क्या सोच रहे हैं कि मैं देखो जरासंध ने दोनों को फेल कर दिया, हमको पास कर दिया। भीम सोचते देखो अर्जुन को भी फेल, यहां तक भगवान को फेल कर दिया, मैं बहुत पहलवान हूं, हमको पास कर दिया। तो भगवान मन ही मन बोले तुमको क्यों पास किया है, आपके एक दो दिन में पता लग जाएगा। जब आप पानी में उतरोगे तो सब पता लग जाएगा। तो दंड युद्ध चढ़ गया, भीम और जरासंध युद्ध करने लगे और जरासंध ने, जरासंध बलवान है, भीम भी बलवान है, कई दिनों तक युद्ध चढ़ गया। युद्ध का समय है सुबह से शाम तक, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता और जरासंध ब्राह्मणों का इतना सम्मान करता है, दिन में उनसे लड़ाई करता है, शाम को उनकी मसाज करता है, बोलता है दिन में आप हमारे शत्रु हैं लेकिन रात में आप हमारे मित्र हैं, अतिथि हैं, तो रात को मसाज करता है, दिन में युद्ध करता है। ब्राह्मणों के प्रति अतिथि के प्रति इतना आदर होता है। पुराने समय में जो दुष्ट राजाओं की कथा सुनते हैं ये भी धर्म का पालन करते हैं। ये तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भागवत में इनकी बात है, उसके बाद में भी करते हमने सुना है कि आज में औरंगजेब शासक हुआ है, वो पूरे हिंदुस्तान का शासक था और ब्रेकफास्ट सभी करता था, सुबह का नाश्ता जब 300 दिन में इकट्ठा कर देता, यानी जब तक 300 हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाएगा ब्रेकफास्ट नहीं करता। और इतने बड़े हिंदुस्तान का सम्राट वो खुद अपनी वो नमाज पढ़ने वाली टोपी होती है ना गोल वाली, औरंगजेब को टोपी बनाता था खुद और टोपियों को बाजार में बेच के आता था, उन टोपियों के बेच के जो इनकम होती थी उससे अपना पर्सनल खर्चा चला था। इतना बड़ा औरंगजेब का नाम एकदम निरंकुश शास्त्रों में आता है। तो ये लोग कुछ न कुछ पालन करते, इसीलिए बुरे काम में भी सफल होते। लेकिन आज कलि के प्रभाव से हम विपरीत परिस्थिति देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो जरासंध धर्म का बहुत पालन करता, दिन में युद्ध रात पति की सेवा। जब बहुत दिन हो गए, एक दिन रात के 12 बजे भीम आए, अर्जुन और भगवान से कहा, कार्य प्रभु ये जरासंध आदमी नहीं है, ये तो पहाड़ है, देखो हमारी हड्डियां एक बेटा उठ नहीं, इसने मेरी एक एक हड्डी को तोड़ डाला है, हमसे नहीं जीता जाएगा। भगवान ने कहा जीतोगे कैसे, तुम समझता है कि तुमने पहले दिन क्या सोचा, हम पास हो गए तो हम दोनों फेल हो गए, ये तुम बोला था, तुमने मन से बोला नहीं, मन ही मन सोचा नहीं, सोचा लड़ो जाओ अभी, अब कहा एक बार हमारे पास तुमको पास किया ना उसने। तो भीम बोले कोई रास्ता बताइए प्रभु। तो भीम से कहा भगवान ने, तुम जरासंध से कुश्ती लड़ते हो, हमारी तरफ देखते हो, एक दिन भी देखा हमारी तरफ, दिन भर लड़ते रहते हो, हम सामने खड़े रहते हैं, दोनों तुम हमारी तरफ देखा, एक दिन हमारी तरफ देखेगा तब कुछ होएगा। तो भीम ने कहा मैं कल देखूंगा, फिर गया। तो दूसरे दिन भगवान की तरफ भी देखता है, उधर जरासंध की तरफ भी देखता है। तो जरासंध ने क्या किया, उस दिन भी जो टूटी हड्डियां थी उनका प्रतिमा बना। फिर रात को 12 बजे आए, बोले देखिए आप हमको इस तरह हड्डी तक ना चुनावी हो गए, लेकर आना चाहते हैं, आपको कुछ करना तो करो, मैं तो आज आपको भाग जाता हूं। तो भगवान ने कहा तुम कल लड़ने के लिए गया था, आज ही हमारी तरफ देखता, आज ही तरफ क्यों देखता? तो भीम का बोला, तुम्हारी तरफ भी देखो तो उधर से हमारा बाल भी नहीं रहेगा। भगवान ने कहा कल देख के देख, मयंक मनोबुद्धि और दस लोगों की गीता में ही भगवान कहते हैं, मयस्त मनोबुद्धि याद नास्ति संशय। एक दूसरा सुनो कि मुझे याद करो, तस्मात सर्वेश काले जो मामल स्वरूप भगवान भगवान का हमारी तरफ देखो, दुख को मैं युद्ध में विजय प्राप्त। तुम कल परसों तक को हमारी तरफ देखता है, कल आगे हमारी तरफ देखता है, आगे हम उसकी तरफ देखता है। लोग भगवान के मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं तो आधी नजर दूसरा स्टैंड पर आधी भगवान की तरफ। आपने हमारे मंदिर में भी देखा होगा, कई जो लोग आते हैं 20-25 हजार का जूता पहन के, वो ऐसे आएगा जूता रख के फिर परिक्रमा में जाएगा, पहले तो उधर से जूता स्टैंड की तरफ दोबारा देख लेता है जूता ठीक है कि नहीं है, फिर इधर भगवान का दर्शन होता है। इस तरह भगवान इस पतंग से शिक्षा देते हैं कि एकमात्र हमारे पर भाव होता है। अनन्या चिंतन को मां ये जना परिपात से पेशा की इत्यादि नाम योगक्षेम कहा, न अन्य चिंतन को मां, किसी दूसरे का चिंतन नहीं, सब दे देंगे योगक्षेम कहा में हम। ये जना परिपात से पेशा की इत्यादि नाम, उनकी जो और रोज की आवश्यकताएं हैं जो उनके पास है, कंडीशन रखती अलग जान चिंतन अंत होगा, जो एकमात्र हमारा चिंतन। इसे भगवान ने भीम से कहा, तो एकमात्र हमारा चिंतन करो, हमारी तरफ से उधर तो खाली हाथ पांव मार रहे। तो पहले दिन भीम गए तो भगवान की तरफ देखा और जरा सा को दोनों टांग पकड़ के उसका जान पांव पकड़ के उसको गिर दिया, एक टुकड़ा इधर फेंक दिया। तो भीमगा समझे आज उसे समाप्त हो गया, गिर गया। पीछे की तरफ मुड़ के देखा फिर जरा सा खड़ा हो गया, क्योंकि दोनों टुकड़े आकर के फिर मिल गए। जरा सा ऐसा बरदान था तो दोनों टुकड़े मिले, जीवित हो गया तो चीरने पर। तब भगवान ने कहा इशारे में इन टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंको, आप अनुकूल दिशाओं में फेंकते हो, सही दिशाओं में फेंकते हो, ऐसे मत करो किस टुकड़े को इधर फेंको किस टुकड़े को इधर फेंको, तब नहीं छोड़े। भगवान ने तिनका दिया हाथ में ताकि तुम तिनका ऐसे फेंकता है, ऐसे नहीं, ये तिनका इधर। फिर भीम गए और उसको विपरीत दिशा में जरासंध को चीर करके उसके दाएं हिस्से को बाएं तरफ, बाएं हिस्से को दाएं तरफ फेंका, तो जुड़ने पर भी भले शरीर के टुकड़े पास में आ गए लेकिन जुड़ नहीं सके क्योंकि विपरीत दिशा में। इसलिए भगवान यहां पे शिक्षा देते हैं कि एकमात्र अनंत अन्ना अन्य चिंतन को मां, चैतन्य महाप्रभु कई दास ईशान एक बार नवदीप में हरिनाम संकीर्तन हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने ईशान से कहा, अरे ईशान तुम इसी गांव के रहने वाले हो ना नवदीप के? ईशान बोला हाँ हाँ इसी यही हमारा गांव। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपना घर नहीं दिखाओगे? तो ईशान ने कहा घर सामने वाला घर हमारा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कौन सा घर? वो जिसके ऊपर की छत नहीं है। ईशान के मकान के ऊपर छत नहीं है वो घर दिखा। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम दिन भर मेरे साथ कीर्तन करता है नाचता है दिन भर हमारे साथ पड़े रहते हो अपना घर की छत ठीक नहीं कर सकते? तब ईशान बोला आपने गीता में क्या कहा अनन्या चिंतयन्तो माम एजना परिपालयते। हे भगवान जो आपकी कृपा की छत्र छाया में रहते हैं जो आपके नाम की छत्र छाया में रहते हैं आपकी कृपा की छत्र छाया में रहते हैं वो कभी भी ईट गाड़े की छत की आकांक्षा नहीं करते। ईशान इसको कहते हैं श्रीवास पंडित। चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे श्रीवास पंडित के घर, उनके लड़के को हैजा हो गया और लड़का मर गया। तो श्रीवास की पत्नी बहुत व्यथित हो गई, हरिनाम कीर्तन में सब लोग नाच रहे हैं। तो श्रीवास की पत्नी श्रीवास को बोलना चाहती है हमारा लड़का मर गया है लेकिन वो मत नहीं कीर्तन। तो बड़ी हिम्मत करके बोली अपनी पति से कि हमारा बच्चा मर गया है। तो श्रीवास पंडित ने कहा ये तो जन्म और मरण का धर्म है लेकिन आज जो हरिनाम संकीर्तन हो रहा है ये कभी नहीं होता। ये जन्मना और मरना तो रोज होता है हर क्षण होता है लेकिन जिस क्षण त्रिलोकीनाथ हमारे घर में नृत्य कर रहे हैं ये क्षण कभी आएगा पगली मरने की बच्चे। ये है अनन्या चिंतयन्तो माम। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद श्रीवास से कहा कि श्रीवास मुझे घर में कुछ अलग से दिखाई देता है। नहीं नहीं महाप्रभु खुद में आप कीर्तन करिए ना, आप कीर्तन रखिए हरिनाम मत रोकिए कुछ भी अनिष्ट नहीं सब ठीक चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोले श्रीवास तुम छुपाते हो तुम्हारे घर में कुछ दुख का माहौल है ऐसा दुख दुख की बात हो गई है। तब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास के बेटे को हरिनाम संकीर्तन के बीच में रखा और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया और बच्चा हरि बोल करके कहा। ये इसका फल अनन्या चिंतन को मां इसे जरा चंद उधार में ये भगवान की लीलाएं हैं। जरासंध भक्त है भगवान का अभिनय करता लीलाएं किसने करते हैं भगवान द्वारिका में ही नारद जी के मन में एक बार इच्छा हुई कि भगवान की 16,108 पत्नियां और एक भगवान इतनी पत्नियों को एक आदमी एक पत्नी को कुछ नहीं रख सकता कि एक भगवान इतने हजार पत्नियों को कैसे रख सकता। दिनचर्या देखने के लिए गए रुक्मणी के महल में गए भगवान ने बड़ा आदर सत्कार किया बैठी 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 आसन दिया पांच प्रक्षालन किया दो लड्डू खाने को दिए और एक गिलास दूध दिया। तो नारद जी ने कहा एक्टिंग तो आपने अच्छी की हम आपका भजन रात दिन करते हैं और आप हमारा भजन करने लगे। तो लड्डू खाए फिर जामुवती के भवन में गए वहां भी पांच पक्षालन किया दो लड्डू खाए एक गिलास दूध किया। अब नारद जी ने विचार किया आप भी रुक्मणी के भवन में मैंने उनको देखा जामुवती के यहां भी ये है सत्यभामा के महल में देखा उधर भी बैठे थे लेकिन खिड़की से देखा। नारद जी ने विचार किया अगर मैं अंदर गया फिर दो लड्डू और एक गिलास दूध खाना पड़ेगा फिर पांव धुलवाने पड़ेंगे अगर मैं 16,108 महलों में ऐसे ही गया तो मेरी तो खाल निकल जाएगी पांव। 16,108 का दुगुना करिए 32,216 इतने लड्डू हो दूर हो गया। तो नाथ जी ने सोचा अंदर जाना ठीक नहीं, खिड़की से ही लीला देखूंगा, देखने सब मैं तो खिड़की से देख रहे। तो देखा लिखा 16108 महलों में भगवान को, एक भी महल, एक भी रानी को, एक भी परिवार को ऐसा नहीं देखा जिसमें भगवान नहीं। फिर जब लौट करके दोबारा रुक्मणी के भवन में आए, कई महीने पहले गए थे रुक्मणी के भवन में, तो भगवान ने ऐसे मजाक में पूछा, कब आए नारद जी, बैठिए बैठिए। तब नारद जी ने कहा कब आए, क्या मत गया ही कहां था, मुझे इधर ही बोल दीजिए, आप बोलते कब आए। तब नारद जी भगवान से कहते हैं, प्रभु 16108 महलों में रहना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जो भगवान कण कण में व्याप्त हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में व्याप्त हैं, परमात्मा ब्रह्मे थी, परमात्मे थी, भगवान थी, सब वो 16108 महलों में रहे, ये कोई आश्चर्य की बात। तो उसमें भगवान नारद जी से कहते, पहले तो कहते आइए बैठिए संत महाराज गुरु, बाद में क्या बोलते हैं बेटा, नारद जी बोलते बेटा ज्यादा खेद मत करो, हम धर्म से वक्ता हम परस्त हो जाते, मैं धर्म का वक्ता हूं, उसका अनुमोदन भी करता हूं, इसलिए कभी कभी ऐसी लीला करते रहता हूं, उसकी मत होना बेटा। नाथ जी बोले अभी बाप बना के रखा था, ये बेटा बना दिया। ये भगवान की लीला किस लिए, कि भावी पीढ़ी कोई उन लीलाओं को सुनेगा तो उसका कल्याण। एक बार रुक्मणी भगवान को प्रसाद खिला रही थी भवन में, तो डाइनिंग टेबल पर देखा सामने चीटी जा रही, तो भगवान रुक्मणी को बोले देखो डाइनिंग टेबल पर सामने एक चीटी चैटा जा रहा है, चीटी का बाप चैटा जा रहा है। तो रुक्मणी बोली अच्छी चीटियां तो रोज होती है, वो रोज झाड़ू लगाती हूँ बाहर करती हूँ, भगवान बड़े स्पेशल चीटी है। तो रुक्मणी बोले चीटी की क्या विशेषता है जो बार बार इस चीटी के बारे में आप बोल रहे हैं। तब भगवान बोले ये स्वर्ग का राजा इंद्र है रुक्मणी, ये स्वर्ग का राजा इंद्र है जब चीटी बन के घूम रहा हमारे। फिर भगवान की लीलाओं को, उनके नाम को जो इस कली काल में सुनता है, कलर दोष नदी राजन अस्थि एको महान गुरु कितना दे कृष्ण जो मुक्त संग परम पति। सुखदेव गोस्वामी पाल कहते हैं परिचित महाराज कलर दोष नदी राजन, कली काल ये कलयुग जो है बुराइयों का खजाना है, गोडाउन है, लेकिन इसमें एक महान गुण है अस्थि को महान गुण। इस कली काल में जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन उनकी कथाओं का श्रवण करता है, कीर्तन आदेश संस्य मुक्त संग परम पति, वो इस लोक से समुद्र लोक से इस दुखी संसार से तुरंत मुक्त हो जाता है। इसलिए कली काल में भगवान का नाम और उनकी कथा, अरे नाम अरे नाम अरे नाम एव केवलम कलो नास्तैव 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 गति रंगता, हरि नाम की महिमा, कथा की महिमा, भगवान की कथाएं। समाज में देख रहे हैं विभिन्न कथाएं हो रही हैं, भागवत कथाओं में भी विभिन्न कथाएं हो रही, इसलिए जहां शुद्ध भक्त की कथा, जहां वैष्णव लोग कथा करें, व्यवसाय लोग कथा न करें, कुछ लोगों ने बड़ा व्यवसाय बना लिया है, मस्जिद गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमारी जेब में 10 रुपये, तो व्यवसाय भी कर रहे हैं। देखो उनको फल तो मिला, भगवान की कथा का फल मिल रहा है, लेकिन इससे भी ऊपर फल है। जो इसे व्यवसाय न बना करके यही जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि भगवान की कथाओं का श्रवण, वो व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है, गोलोक वृंदावन का वास होता है, वहां भगवान की सेवा उसको होती है, ये इसका फल है, ये बड़ा फल है। छोटे फल तो भगवान देते हैं, उनके नाम से उनका कोई नाम नहीं मिलेगा उसको ही फल मिलता। जो भगवान की निंदा करता वो भी कह रहा है मुझे नहीं मरता है, लेकिन जो नाम देता है गुरु आश्रय में, वैष्णव के आश्रय में, उसकी उत्तम 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 गति होती है। इसलिए कली काल में भगवान का नाम संकीर्तन, उनकी कथाएं, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद अगर हम श्रवण करें तो हमारे जीवन को हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। और सिद्धि ये है कि हम सीधे भगवान के नाम, अब कई लोग भगवत कथा इसलिए भी नहीं सुनते कि कहीं तुरंत सिद्धि ना हो जाए, सिद्धि का मतलब मरना पड़ेगा ना, अब मरना कोई चाहता नहीं। भागवत आत्म में कथा है कि धुंधकारी ग्रहण प्रसंग में बाद में विमान आया तो वो विमान लेकर के धुंधकारी को चला गया। एक बार एक आदमी हमसे पूछ रहा था कि हम सोचते हम पता क्या कथा सुन सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कविता साइकिल भी नहीं आई। धुंधकारी के लिए विमान आया और हमारे लिए साइकिल मोटरसाइकिल भी नहीं, क्यों? तो कई लोग विचार से भी जाते हैं जैसे धुंधकारी के लिए होते हैं विमान आया हमारे लिए भी आएगा। वो विमान का मतलब वो विमान अलग अलग उद्देश्य है। एक दृष्टांत महा सागर में कथा आती है, एक जगह भागवत कथा हो रही है, एक बुढ़िया आकर के बैठ गई, प्रसन्न था हंसने का लेकिन वो रोने लगी। तो कथा समाप्त होने के बाद जब आरती हो गई तो कथा का फिर पूछा बुढ़िया से, आज का कोई ऐसा प्रसंग रोने का तो नहीं था, तो तुम रो क्यों रही है? बुढ़िया बोली मैं आपकी कथा सुनने नहीं आई थी, मेरी बकरी खो गई है 3-4 दिन से, उसको ढूंढ रही थी, अचानक कथा में आ गई और हमारे बकरी की दाढ़ी और तुम्हारी दाढ़ी एक जैसी, तो मुझे आपकी दाढ़ी देख करके अपनी बकरी की दाढ़ी याद आ गई, इससे रोना। इसे भागवत कथाओं में तो बैठ गई, अब पता नहीं प्रयोजन क्या है, प्रयोजन पता नहीं क्या है। फल प्रयोजन का मतलब विमान उद्देश्य के लिए आए, किस उद्देश्य बैठे थे, किस उद्देश्य कथा सुनी, ये उद्देश्य देखा जाता है, सुनने वाले का भी और कथा कहने वाले। अलंकारिक भाषा में कोई भी, लेकिन अनन्या चिंतन और अनन्य भाव से मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, उनकी सेवा को प्राप्त करना है, उनकी उनका सेवक बनना है, इस भाव तो भगवान तुरंत ही कली काल में तुरंत उसका फल दे। कली, कई संत लोग कहते कि कलयुग जो है और युगों से बहुत अच्छा युग है, इसमें तत्काल फल है, तुरंत करो फल, आज कथा सुनो शाम को फल, सुबह हरिनाम करो शाम को फल। इससे नाम भगवान का एक नाम चिंतामणि है, चिंतामणि मतलब खाली नाम का चिंतन करो फल, सब फल है, पुण्य का भी फल है, पाप का भी फल, भक्ति का भी फल है, अभक्ति का भी फल। इससे तक्षणा हमको कोई भी फल चाहिए उसके लिए पहली बार, इससे क्यों ना हम ऐसे काम करें तुरंत फल मिले और हम भगवान की भक्ति करें और तुरंत और कोई काम करें। इससे हमें कली का, हम जो कली में पैदा हो गए हैं हमको ये लाभ लेना है, और भगवान की कथाओं से कीर्तन से अपने जीवन को सफल बनाए। अरे समय का प्रतिबद्धता है, कथा वैसे 3 घंटा लगता है, आप कोई प्रश्न पूछ लीजिए तो 5 मिनट और कथा हो जाएगी, या हम बीच में गलत बोल गए हम सही कर दीजिए तो 5 मिनट हो जाएगा।
तो
बाई तरफ नहीं होंगे तो दाई तरफ होंगे, इस तरफ तो वही नहीं
मिलता।
अशोक दिखो दरो पार्थो सच राधा जो हम अशोक होता मेरी बाई लोग स्पष्ट कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अशोक रुको दरो पार्थो, ये देखो अशोक रुको दरो पार्थो सच भाषा क्यों है। अभी स्पष्ट अभी दारुक है नहीं, भगवान ने बैरी ने जब भगवान को बाण मारा प्रवास क्षेत्र में तो भागवत में वर्णन है कि वो भगवान ने बहिनी को कहा कि तुम स्वर्ग चले जाओ, वहां पर टीकाकार ने स्वर्ग का अर्थ कहकर उसे किया। टीकाकार प्रभुपाद जी ने टीकाएं लिखी हैं, जो भागवत के जानकार में टीकाएं लिखी, तो भागवत में कई शब्द ऐसे हैं उन्होंने उनको स्पष्ट किया। तो यहाँ पर अशो शब्द बाया सच भाषा जिन्हों रहे होता है, और फिर अपना परिचय भगवान ने दिया अनोर मासे, मैं इन दोनों के मामा का लड़का हूं और तुम्हारा पुराना दोस्त। आप पढ़ लीजिए अरे भगवान ने मारा तो भगवान के नाम चला गया। अभ्यास योग योगतेन चेतसा नानि गामिना परम पुरुषम दिव्यम व्यास पाठानो चिंतन गीता में भगवान मन इधर उधर जाता है, कृष्ण ये बात कह रहे हैं चंद्रम ही मनो कृष्ण, मन बड़ा चंचल है इधर जाता है उधर जाता है, कथा में बैठे ध्यान कहीं और भी आए हैं, जैसा आपका प्रश्न है ये प्रश्न अर्जुन भगवान से करते हैं। तब भगवान कहते हैं अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम याद, किसका अभ्यास करो ध्यान का, तो परम पुरुष भगवान हो पाठान चिंतन। हिंदी में कहते हैं करत करत अभ्यास के जन्मति हो तो सुजान रसरी आप त्याग पर चिल पर हो, कितना ही मन चंचल हो कठोर हो भगवान की कथाओं से कोमल हो जाता है वास्तव में। जैसे किसी रस्सी को पत्थर से घिसते हैं गांव की महिलाएं, तो जिस रस्सी को पत्थर से घिसते हो पत्थर जो है बहुत कोमल हो जाता है रस्सी का संग। कॉमर्स दीजिए ना
कॉमर्स अब देखा कि उसमें एक बार भी नहीं रुकी, एक बार रुकी तो खड्डा तो में आता
है। आपके गांव में आकर रुके हो फिर द्वारिका में नहीं रुके, बात हो रही द्वारिका की पंडरपुर की नहीं
तो तपस्या करके आए थे,
लेकिन जब भगवान से विवाह हुआ रुक्मणी विवाह उसकी बात कुंभकर्ण को उसने मारा तो कुंभकर्ण की पत्नी आई, तो कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा आपने मेरे पति को मारा है और मैं भी तुमको छोड़ूंगी नहीं, तो भगवान ने कहा ठीक है तुमको अगर हमसे बदला लेना है तो दे देना। तब कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा मैं बदला आपसे लड़ के नहीं लूंगी, जो लोग भी आपकी कथाएं सुनेंगे उनके दिमाग में आगे बैठ जाऊंगा। कि वो आपके आपके कथा सुन नहीं सकर आपके धाम को भी जाए नहीं, उनका की पत्नी ने वचन दिया है भगवान। तब भगवान ने कहा मैं भी अपने भक्तों से कह दूंगा कि जब कभी उनको नींद आए तो बीच में हरे कृष्णा बोल करके हरि ध्वनि बोले जाकर।
थैंक यू
बड़े ग्रंथकार।